राधे वृंदावन चली विश्वभान तेरे प्रणमामि हरि प्रिये।
आज बड़े आनंद की बात है कि आज शुभ दिवस जन्माष्टमी के तिथि पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कुछ कृष्ण का गुणगान करने के लिए। आज से करीब करीब 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्णचंद्र जी जो समस्त कारणों के कारण हैं, जिनका कारण कोई नहीं, सबके आदि हैं किंतु स्वयं अनादि हैं, समस्त अवतारों के भी अवतारी, समस्त सर्वशक्तियों के भी शक्तिमान रसो वैसा कृष्णचंद्र जी जगत में आज ही के दिन में पधारे थे। उस समय की स्थिति बड़ी भयानक थी, आज भी स्थिति बड़ी भयानक है, किंतु इस उस समय की स्थिति विजयेश्वर के मथुरा की स्थिति बड़ी भयानक थी। रामचंद्र जी ने जिन असुरों को त्रेता जी के अंत में मारा था, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और जितने बड़े बड़े असुर थे, वो सब लोग जन्म लेकर के आए थे और धर्म के विरोधी काम कर रहे थे। उस समय स्थिति ये थी कि कोई भी व्यक्ति अपना अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाता था। कोई भी व्यक्ति स्वाधीनता के साथ ही नहीं रह पा रहा था। काल में भी कंस के रूप में जन्मा था। जरासंध, काल जवन, संत वक्र, शिशुपाल, ये सब लोगों ने जन्म लिया था। यद्यपि क्षत्रिय तो थे किंतु ब्राह्मणों को, भक्तों को, गायों को आती उन पर अत्याचार ये लोग करते थे। हरे वृक्षों को काट देते, गायों को भी काट देते, जैसे आजकल हो रहा है। पृथ्वी में चारों तरफ में अत्याचार फैल गया था। उस समय पृथ्वी की गाय का रूप धारण किया और देवताओं के पास में गई। देवता लोग इसका कोई भी प्रतिकार नहीं कर सके, वो ब्रह्मा के पास में उनको ले गए। देवता लोग भी गए, ब्रह्मा जी के भी समझ में नहीं आया, उन्होंने शंकर जी को साथ लिया और फिर सागर के तट पर गए और भगवान की आराधना करने लगे। आराधना करते करते उनकी समाधि जब लग गई तो समाधि में उन्होंने सुना कि पृथ्वी पर जो भार हो रहा मुझे पता है और तुम ऐसा करो जो देवताओं को आज आप लोग कुछ चाहती, देवताओं को आदेश दो, वे लोग गोकुल में अवतरित हो और उनकी स्त्रियां भी गोपियों के रूप में अवतरित हो हमारी श्रीमती जी की सेवा करने के लिए। मैं धर्म की स्थापना करूंगा, असुर का दमन करूंगा। उसी समय में ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया और देवताओं को उसने कहा कि आप हमारे प्रभु को जान गए हैं, आप लोग लौट जाइए। जल्दी से ही धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे मूल प्रभु समस्त अवतारों के अवतारी भगवान कृष्णचंद्र जी अवतरित हो, आप लोग देव गोकुल में और जादवपुर में अवतरित हो। उसी समय उन्होंने योग माया को आदेश दिया कि कंस देवकी के गर्भ से प्रकटित हुए सौ पुत्रों को मारेगा और उस समय मेरा अंश बलदेव भी देवकी के गर्भ में शास्त्रीय गर्भ में आएंगे और उस समय तुम उनके गर्भ से बलदेव जी को आकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में उनको स्थापित कर देना। वो लोग समझेंगे कि उनका सातवां गर्भ पास हो गया है। इसके बाद आठवें गर्भ में मैं आऊंगा। ये सब स्थिर करके उन्होंने सारी व्यवस्था की। उसी समय में उग्रसेन कंस उग्रसेन राज्य करते थे इसी मथुरा राज्य में। उस समय इसका नाम था सूरदेव राज्य। वहां पर उग्रसेन के छोटे भैया का नाम देवक था। देवक की पुत्री का नाम देवकी था। वो विवाह के योग्य हुई। कंस उग्रसेन का अपना खास लड़का नहीं था। यदि खास लड़का होता तो इतना असुर नहीं होता। वो तो दैव योग से उसकी मैया अपने शिहर में गई और वहां दैत्य से उसका भेद हुआ और उसी के संग में रहने से उसको कंस नामक यह असुर उनके गर्भ में आया। ये बड़ा हो गया था। उस समय में देवकी की शादी में और शामिल हुआ और देवकी का और उनके पति वसुदेव महाराज जी का और हाथ करके फूक जाने लगा। इतना वो बलवान था कंस कि एक समय उसके पहले जरासंध मगध से यहां पर आया था आक्रमण करने के लिए। जरासंध के साथ में बड़ी बड़ी हाथियां थी। उन्होंने हाथियों को यहां मथुरा में भेजा उत्पात करने के लिए। वो शहर में आकर के उत्पात करने लगी। कंस इतना दीप था कि वहां आकर के हाथियों से पैर को पकड़कर और ऐसे घुमाकर और जरासंध के की सेनाओं पर ही उसको फेंक दिया। उनकी सेनाएं क्यों मार हो गई तो उसने सोचा कि इतना बलवान है इसे मैत्री करनी चाहिए। इसलिए उसने अपनी दो कन्याओं की शादी कंस से कर दी। एक का नाम अस्ति और दूसरी का नाम प्राप्ति था। अब वो कंस अपनी बहन की शादी में रथ पर चढ़ करके रथ चला रहा था। इसमें में आकाशवाणी हुई, रे कंस जिस बहन के लिए तू इतनी अच्छी तरह से उसकी सगाई में इतना तुमने उपहार दिया और स्वयं रथ के लगाम को घोड़े के लगाम को पकड़ करके ले चल रहा है उसी से गर्भ से आठवां लड़का तुम्हें मारेगा। बस एकदम रथ से टूट पड़ा और दाहिने हाथ से तलवार लेकर और बाएं हाथ से देवकी का पेट पकड़ लिया और उसको कहा जे न रहेगा बात न बजेगी बहासुरी। उसने उनका सिर काटने के लिए एकदम तैयार हुआ। दैववाणी के ऊपर में देखो नास्तिकों का ऐसे ही विश्वास और अविश्वास होता है। उसने देखा सुना कि आठवां गर्भ से जो संतान पैदा होगा वो हमें मारेगा कंस को। इस पर तो उसने विश्वास कर लिया किंतु उसको झूठा बनाने के लिए आकाशवाणी झूठी हो जाए और देवकी को मारने के लिए चला इसका गला हम काट देंगे बच्चा ही नहीं पैदा होगा उसको मैं झूठा कर दूंगा। नास्तिक ऐसा ही करते हैं और सोचते हैं किंतु होती वही है जो राम और रचि राज था वही होगा। जो भगवान की इच्छा है वही होगी। वो तो समझ रहा था कि देवकी को आज मैं काट दूंगा किंतु हुआ क्या यही वो अस्त्र शस्त्र लेकर और उसको काटने दौड़ा। वसुदेव जी वहां पर उपस्थित हो गए और हाथ जोड़ करके बोले, अरे ये कन्या तुम्हारी कन्या के समान है, तुम्हारी बहन होने पर भी देखो इसको मारो मत, कभी वीर पुरुष लोग कन्याओं का वध नहीं करते, ये तो तुम्हारी कन्या है, पुत्री है। अच्छा देखो आज तक जिसने भी जन्म लिया है वो मरा कि नहीं मरा, अरे एक न एक दिन तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है, इसको भी मरना है। तो तुम हिजड़े हो गए, एक लड़की के डर के मारे तुम उसको आज काटने जा रहे हो, लोग क्या कहेंगे? यही तुम्हारी वीरता है? वीर लोग तो ऐसा करते नहीं, वो माना नहीं, फिर भी काटने के लिए तैयार हुआ। तो देवकी ने कहा जे भैया तू हमें माफ मार, हमारी लड़की यदि होगी और तुम्हारा लड़का होगा तो मैं अपनी लड़की की शादी तुम्हारे लड़के के साथ में करूं, तू हमें मत मार। बहुत समझाया नहीं माना, तो वसुदेव जी ने कहा देखो मरना तो ही है, तुम फिर भी डर कर रहे हो, डरते हो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इसके गर्भ से जितने भी बच्चे होंगे चाहे लड़के हों या लड़की मैं तुम्हारे यहां दे दूंगा, तुम अच्छी तरह से मार देना या तुम्हारी जो इच्छा हो। वसुदेव जी ने सोचा, ऐसे ही नहीं कह दिया, कृष्ण के पिता हैं, साधारण कम नहीं है चला, उन्होंने सोचा अच्छा कह तो दें, ये लड़का इच्छा होगा तो मारेगा, तुम उसे मार डालना। अच्छा वो लड़का होने के पहले यदि कंस मर गया तो कोई बात ही नहीं रहेगी, मनुष्य का कोई जन्म का और मरने का कोई ठीक नहीं, इसलिए हो सकता है कि किसी कारण से कंस मर जाए और हमारे बच्चे सब बच जाए। दूसरी बात, हमारे लड़का होगा कोई जरूरी नहीं है कि कंस उसको मारी डालेगा, यदि भगवान की नियत नहीं होगी तो ये कभी भी नहीं मार सकता, इसलिए हर हालत में देवकी को बचाना ही हमारा कर्तव्य है, और इस पर भी यदि नहीं वो बचती तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। इसलिए उन्होंने कह दिया कि इसके गर्भ से जो भी बच्चा पैदा होगा मैं आपको दे दूंगा, आप मान लो। अच्छी बात, इसको जेल में बंद कर दो, इन दोनों को फटकड़ी और बेड़ी लगा दो, यही मथुरा के जेल खाने में जहां कृष्ण का जन्म स्थान है उसी जगह में उनको बेड़ी और हथकड़ी लगा करके जेल खाने में बंद कर दिया। भाग्य क्रम से उनको पहला लड़का हुआ और वसुदेव जी ने बिना किसी तरह से उसके प्रति आसक्त हुए मोह सब सब छोड़ दिया और बच्चे को लेकर के कंस के पास में पहुंच करके उनके हाथों में समर्पण कर दिया। कहते हैं भागवत का व्यास जी, संतों के लिए क्या करणीय कठिन है, संतों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं और दुष्ट भी वो सब कुछ कर सकते हैं, ये लोग सब प्रकार का त्याग कर सकते हैं और वो दुष्ट लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को दूसरों को अपनी मैया बाप को भी काट सकते हैं। इसी कंस नहीं तो अपने पिताजी को जेल खाने में बंद कर दिया साथी से, इसलिए वसुदेव जी सब मोह छोड़ करके अपने बच्चे को संत के पास में लेकर के दे गए। कंस ने देखा अरे ये बच्चा तो हमें मारेगा नहीं, अच्छा महाराज आप मेरे बहनोई हैं, आप साधु हैं, आप अपनी बात पर अटल हैं, मैं आपके ऊपर में विश्वास करता हूं, आप इस बच्चे को ले जाइए और जेल खाने से भी आपको छोड़ रहा हूं, अब अपने घर में जाइए और रहिए, जब बच्चा पैदा होगा हमारे पास में दे, हमको मारने की कोई जरूरत नहीं है, आठवां बच्चा से हमें भय है इसलिए आठवां बच्चा हमें दे देने, बस उसी बच्चे का वध करूंगा, मैं बेकार का पाप क्यों करूं, ऐसा कह करके उनको छोड़ दिया दोनों को। वो न प्रसन्न हुए और न दुखी हुए, क्यों नहीं प्रसन्न हुए? ये जो दुष्ट लोग होते हैं इनकी बात का कोई भी भरोसा नहीं, अभी आज कहेंगे और फिर कल बदल देंगे। अभी ये कह रहा है, छोड़ रहा है हमें, और देखो ना तो हो जाएगा तो कल हमको पकड़ लेगा, इसलिए सुखी नहीं हुए, बच्चे को लेकर के चले गए। नारद जी उसी समय में को नारद जी ने सोचा, यदि आप अत्याचार नहीं करता तो भगवान प्रकट नहीं होंगे, इसलिए किसी प्रकार से अत्याचार करे और तब भगवान प्रकट हो उससे मारेंगे। और भी एक बात है, सर्वगर्भ नामक 6 बालक थे, अपने पिताजी ब्रह्मा की हंसी उड़ाई थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने भी साथ दिया था, जाओ तुम्हारा बाप भी तुम्हें मारेगा। मरीची के लड़के थे, कुछ दिनों के बाद में हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष था, उसके पुत्र रूप में हुए कि कालनली के रूप में, और कालनली ने अपने इन 6 को बच्चों को मार। फिर वही लड़के देवकी के गर्भ में आ रहे हैं और कंस उसको मारेगा, तो यदि कंस ने छोड़ दिया तो उन बच्चों का उद्धार कैसे होगा? उन बच्चों को मरना है सड़गर्भ को, इसलिए किसी न किसी प्रकार से उन बच्चों को भी मरवा करके कृष्ण के हाथों से उनका उद्धार कराना है, कैसे वो पीछे बतलाएंगे? साथ ही साथ इसको अत्याचार कराना होगा, नहीं तो भगवान आएंगे नहीं। और जो कार्य है ये सब कार्य नहीं होगा, जगत में कृष्ण प्रकट होंगे वो प्रेम देंगे, गोपियों का प्रेम जगत में प्रचार करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं दिया, ये सब काम नहीं होगा। इसलिए ऐसा सोच करके नारद जी भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कंस के पास में गए और कंस से बोले, देखो तुमने उस बच्चे को छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, भला नहीं किया तुमने आपने, देखो तुमने क्यों छोड़ दिया, तो ये बच्चा हमारा भगिया है और हमें से ये मारेगा नहीं, हमें तो 8वां गर्भ देवकी का मारेगा, इसलिए 8वें गर्भ को ही मारूंगा। उन्होंने कहा कि देखो जीनो, तुम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यदि 8वें गर्भ से तुम गिनो तो फिर 7वां जो पुत्र होता है 8वें से लेकर के गिना जाए, 8 को 1 मान लिया जाए, 7वां पुत्र 8वां हो जाए। फिर यदि तुम या हाथ से समझ लीजिए ये 8 है, ऐसे कर दिया जाए, इस अंगुली से गिना जाए तो 8वां यहां होगा, इस अंगुली से करेंगे तो 8वां हो जाएगा, ये प्रत्येक आंगुल ही अटकी होगी, इसलिए देवकी का 8 पुत्र ही आत्मा गर्भ है, ये सब बड़े हो करके तुमको मिल करके मारेंगे, इसलिए तुम किसी बच्चे को छोड़ो मत। ऐसा समझाने पर वो समझ गया और उन्होंने देवकी के पुत्र को पुनः बधाकर और उसका वध कर दिया और उनको जेल के सिकंजे में पुनः भर दिया। जो भगवान को मालूम हो जो इतना अत्याचार कर रहा है सब हम आए। कुछ दिन के बाद में 6 गर्भ हुए 6 कुमार, 7वें गर्भ में बल दे दिया। आने के बाद में जबकि वो 7 के हुए तो देवकी के गर्भ से योग माया ने आकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में उन्होंने गोकुल में उनके गर्भ में दे दिया। रोहिणी जी वसुदेव जी की पत्नी है, वसुदेव जी की बहुत सी पत्नियां थी जिसमें ये थी, ये भी एक थी। उस समय में वो गर्भवती थी, इनका गर्भ उसमें दिया, अर्थात वहाँ जो बलदेव जी, जो बलदेव जिरोहणी के गर्भ थे, उसमें ये देसी वाले पुत्र मिल गए। देसी वाले पुत्र वासुदेव अथवा भगवान है नारायण, और नारायण आकर के बलदेव जी मूल जो हैं उनके अंदर में मिल करके दोनों एक हो गए। और कृष्ण के जन्म के पहले ये 8 दिन पहले जो पूर्णिमा गई उसी दिन उनका जन्म हुआ। तब तक वो उनको नंद बाबा ने चुरा करके चुपचाप रखा था वहां पर, किसी को पता नहीं लाने दिया, क्योंकि कंस उससे मार डालते, इसलिए किसी को पता नहीं। आज के दिन में अंधेरी रात में अष्टमी की रात है, आज जैसे पानी दिन में हो रहा था या कुछ दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, ऐसे रिमझिम पहले पानी हो रहा था। जब कृष्ण के प्रकट का जब समय हुआ, घोर अंधकार छा गया, खूब जोरों से वर्षा होने लगी, पहरेदार भी सो गए, कोई घर से निकल नहीं पाता था। इसलिए ऐसा किया जोग माया ने, किसी को पता न चले और कंस को भी पता न चले, पहरेदार भी सो जाएंगे और वसुदेव महाराज जी कृष्ण को लेकर के और वहां पर दे आएंगे। इसलिए ये जोग माया के प्रभाव से हुआ। ठीक समय में रात में ये प्रकट हुए, अब होने का समय प्राय हो रहा है, 10-5 मिनट की देरी है, 10-5 मिनट के बाद ही में एक कीर्तन करके हम लोग अभिषेक दर्शन करने के लिए जाएंगे और उनकी आरती हम दर्शन करेंगे। आप लोग सभी लोग चरणामृत और पंजीरी लेकर के तब जाएंगे। तो कृष्ण जी प्रकट यहाँ पर हुए रात में ठीक 12 बजे, नारायण तत्व यहाँ पर प्रकट, शंख चक्र गदा और पद्म लेकर, जन्म नहीं हुआ माता के गर्भ से। जैसे हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए खंभे को फाड़ करके प्रकट हो गए विकराल रूप उनका, ऐसे यहाँ पर 16 वर्ष के लड़के जैसे युवक किशोर के रूप में उनके लंबे लंबे केश घुघराले, सोने का मुकुट, शंख चक्र गदा पद्म लेकर, धोती कपड़े अलंकार के सहित, कौस्तुभ मणि इत्यादि के सहित में यहाँ पर प्रकट हुए जेल खाने। 16 वर्ष का लड़का जन्म नहीं लेता, प्रकट हुए जैसे रामचंद्र जी प्रकट हुए, भय प्रकट पिताला दीन दयाला कौशल्याधिकारी, ऐसे यहाँ पर कृष्णचंद्र जी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के जेल खाने में यहाँ पर पैदा हुए। ठीक 12 बजे के करीब में, ठीक उसी समय में गोकुल में जशोदा जी को एक लड़का हुआ, दोनों का समय एक समान यहाँ पर हुआ प्रकट, जन्म नहीं। और वहां पर जशोदा जी के गर्भ से कृष्णचंद्र जी दो भुजा के रूप में, छोटे से बच्चे शिशु के रूप में यहाँ पर वहां पर जन्म लिया। यहाँ पर हम देख प्रकट होते ही ये लोग स्तव स्तुति करने लगे, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। और पूर्व जन्म की स्मृति के लिए कृष्ण ने कहा, पूर्व जन्म में तुम लोगों ने अदिति और कश्यप के रूप में हमारी तपस्या की थी, और वर मानना था ये हमारे जैसा ही तुमको पुत्र हो, हमारे जैसा तो जगत में कोई है नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे पुत्र के रूप में ये मैं प्रकट हुआ हूँ। कहने के साथ में स्तव स्तुति कर दिया, करने लगे और बोले कि आप शिशु बन जाइए, शिशु बन जाएगा तो हम कंस को पा करके किसी प्रकार की आपकी रक्षा कर लेंगे, और यदि इस रूप में रहेंगे तो हम रक्षा नहीं कर सकेंगे। जानती हैं वो दोनों वसुदेव जी और देवकी, ये तो भगवान है, कोई उनको मार नहीं सकता, किंतु साथ ही साथ उनको मुंह ऐसा हो गया जो उनसे प्रार्थना की, आप छोटे से बच्चे हैं। ठीक इसी समय यही प्रार्थना की, उनके जेलखाने में जो कृष्ण वहां पर पैदा हुए थे यशोदा जी के गर्भ से, वो साथ ही साथ विभिन्न रूप जो कृष्ण स्वयं भगवान हैं, वो यहाँ पर उपस्थित होकर के कारागार में और उनको अपने अंदर में ले लिया और लेकर के विभिन्न के रूप में वहां पर रोने लग गए और वसुदेव जी से बोले जेल का दरवाजा खुल जाएगा, अभी तुम हमको लेकर के गोकुल में वहां पर पहुंचाओ। और वहां पर यशोदा जी को एक लड़की हुई है, आप वहां से लड़की को ले आए और लड़के को वहां पर रखा। वसुदेव जी जो ही उसको अपनी गोदी में लेकर के चले, तभी खूब जोर से वर्षा होने लगी। उसी समय में संकर्षण अनंत देव सर्प का रूप धारण करके उसके ऊपर में छत्र छाया कर दी और चलने लगी। जमुना में बड़ी जोर से बाढ़ आ रही थी, वहां पर जमुना को पार करने का कोई भी उपाय नहीं था। इसी समय में देखा एक श्रृगाल जमुना में चल रहा है और थोड़ा सा ही पानी है, जमुना में तो पानी तो खूब अधिक था, किंतु उनको विश्वास दिलाने के लिए वो चल पड़ा। श्रृगाल श्रृगाल जबकि चलने लगा तो ये पीछे पीछे ये भी चलने लगे। इधर यमुना जी ने देखा आज हमारे प्रभु बहुत दिनों के बाद में मिले हैं, उनका चरण हमें स्पर्श कर, इसलिए वो जब चलने लगे तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगे। वो गोदी में से उठा करके सूप में रखते थे, सिर पर उठाए तो यमुना जी ही बढ़ने लगी। कृष्ण ने देखा कि पानी तो यहाँ तक आ गया वसुदेव जी को, उन्होंने उनको दया आई और उधर यमुना जी भी छोड़ेंगे नहीं, उनका चरण जरूर पकड़ेंगे, इसलिए पीछे से उन्होंने अपने पैर को लंबा कर दिया और यमुना जी ने उनको स्पर्श कर लिया और यमुना जी ने स्पर्श करके एकदम पीछे एकदम नीचे श्रृगाल जैसा चल रहा है उसके पीछे पीछे चलते हुए गोकुल में पहुंचे। वहां पर जाकर के देखा सभी लोग सोए हुए हैं, यशोदा जी को एक सामने वहां पर लड़के, उन्होंने लड़के को रख लिया और लड़की को लेकर के चले गए। यहाँ आए किसी को पता नहीं, जब ही आए त्यों ही सब भीतर में चले गए और देवकी के गोदी में उस बच्ची को दे दिया और घर में जेलखाना बंद हो गया। बच्ची रोने लगी और पहरेदार लोग सब जग गए, कंस को जाकर के खबर दिया, कंस दौड़ा हुआ यहाँ आया, देखा ना खुला करके जब सामने आया तो बच्ची को मांगने लगा। देवी ने सोचा जब मेरा जो लड़का होता और इसको मार डालता तो कोई बात नहीं, हमने 6 बच्चों को तो दे दिया था, इसको भी दे दे, किंतु ये लड़की तो मेरी नहीं है, ये लड़की किसकी है, ये तो देवकी यशोदा जी की है। इसलिए भैया के पैरों में पड़ने लगी, तरह तरह से रोने लगी, घिघियाने लगी, किंतु वो माना नहीं, बच्ची के पकड़ करके और दोनों पैर पकड़ करके और पत्थर वहीं पसा और उसके ऊपर में खूब जोरों से पटका, पटकते ही वो तो जोग माया थी उसके हाथों से निकल गई, आकाश मार्ग में पहुंच गई और बोली रे कंस तू हमें क्या मारेगा, तू हमें मार नहीं सकता, बल्कि जाते समय पैर से एक ऐसी ठोकर उसको दी जिससे कि वो गिर पड़ने लायक हो गया और मरते मरते बचा। उन्होंने देखा कि ये तो हमारी आराध्या देवी, ये दुर्गा देवी है, और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। उन्होंने कहा देवी जी ने देख रे कंस तुम्हारे मारने वाला तो कहीं जन्म ले लिया, अब मेरे मारने से कुछ नहीं होता, मैं तुमसे मर भी नहीं सकती। इसके बाद में कह करके और देवी जी अंतर्ध्यान होकर के चली गई, भगवान के बर से वही विंध्याचल में गई, उन्हीं का नाम है विंध्याचल वासी, वही दुर्गा जी हैं, उन्हीं को जितने भी नाम है दुर्गा काली चंडिका दुर्गा इत्यादि सब उन्हीं के नाम है। भगवान ने उनको कहा था हमारी पूजा जगत में उतनी नहीं होगी जितनी कि तुम्हारी पूजा होगी, क्योंकि तुम हमारी सेवा करती है और जगत के लोगों को धन धान्य पुत्र संतति राज्य उनके दुखों को दूर करना ये सब तुम करेगे। मेरा भजन करने से मैं तो उन्हें भगवान की अपनी भक्ति देता हूँ, संसार से उसका उद्धार कर देता हूँ, किंतु तुम ऐसी चीजों को देगी जो लोग समझेंगे ये हमारे ऊपर में दुर्गा जी ने की दया की, किंतु ये यथार्थ दया नहीं। धन पुत्र परिवार तो यही रह जाता है कि ऐसी चीजें हैं, लोग यही चाहते हैं और इसी के लिए दिन रात चिंता करते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास भी लोग कहते हैं, महाराज जी मैं बहुत चिंतित हूँ, मेरी चिंता दूर कीजिए, मैं क्या करूँ। मैंने कहा ये संसार की चीजें तुमको मिलेगी और तुम निश्चिंत होगा या चल, जब सब कामनाओं को छोड़ देगा तब कहीं जा करके सुख और शांति हो सकती है, बिना भगवत भजन के शांति नहीं। दुर्गा देवी तो अलक्षित रूप में चली गई, यहाँ पर उनका जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, गोकुल में उनका जन्म हुआ, यहाँ पर अपनी मैया का दूध इत्यादि कुछ भी नहीं किया, कोई लीला नहीं हुई, गोकुल में जाकर के दूसरे दिन बधाई बजने लगी और उनकी नाड़ी कटी, वहाँ पर जात कर्म वहाँ पर हुआ। और नंद महाराज जी लाखों गायें, कितनी गायें जने दान की और सब ब्राह्मणों को दिया, और बाल्यकाल वहाँ पर हुआ, यशोदा जी वहीं पर उनको अपना पुत्र मान करके उनकी सेवा की। यथार्थ समय कृष्ण के माता पिता कौन थे? साधारण रूप में देवकी और वसुदेव, मथुरा में उनको जन्म दिया यह बात ठीक है, किंतु यहाँ जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुए भगवान के रूप में और वहाँ पर उनकी जन्म लीला है पूर्ण रूप से। और वही कृष्ण 16 कलाओं में पूर्ण है। 16 कला माने क्या? समस्त प्रकार की 16 प्रकार की जो शक्तियां हैं, उन समस्त शक्तियों के साथ में कृष्ण भी अवतरित हुए। वहां कृष्ण लीला की बहुत विशेषता है। कृष्ण कौन असुरों को मारने के लिए ही नहीं आए, ये तो साधारण उनको इच्छा करने से ही कर देते, जगत में प्रेम को देने के लिए जगत में आए। गोपियों के साथ में अवतरित हुए, राधा जी उनकी प्रधान शक्ति हैं, ब्रज में इनकी जो लीलाएं प्रेम की हुई हैं, यदि राज लीला नहीं होती, प्रेम की लीलाएं नहीं होती, तो कृष्ण भगवान रसिक हैं, रसो वैसा यह वैश्य की वाणी असक्त हो जाती, किंतु साथ साथ उन्होंने देखिए प्रेम दिया। किंतु यदि महाभारत का युद्ध नहीं होता और भीष्म पितामह जी और जैसे वीर लोग थे, जरासंध था, इन सबको मरवाया नहीं होता और अपने हाथों से अगासुर बकासुर कंस को नहीं मारा होता, तो लोग समझते उनको लैला और मजनू की भांति उनको समझ लेते। भगवान में ऐश्वर्य भी है और उनमें माधुर्य भी है। भगवान में ऐश्वर्य नहीं होगा, केवल माधुर्य ही होगा, तो सब चौपट हो जाएगा। माधुर्य कहते हैं किसको? नर लीलावत भगवान की जो लीलाएं होती हैं उसमें कोई भी ऐश्वर्य नहीं होता, उनको माधुर्य जब भी समझ लें तो हमारे बच्चे भी माधुर्य हैं, किंतु नहीं, कृष्ण भगवान हैं, केवल भगवान ही नहीं स्वयं एक चांद कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रज में उन्होंने गोपियों के मान को दूर किया, उनके पैया पड़े, मान उनका दूर करने के लिए जैसे जयदेव गोस्वामी ने कहा है, स्मर गरल खंडनम, स्मर गरल खंडनम, मम शिरसि मंडनम, हे ही पद पल्लव अमुदा। गोपियों के राधा जी के चरणों में सिर को झुका रहे हैं, तुम मान अपना दूर करो, बार बार उनसे कह करके अपने सिर को भी राधा जी के चरणों में डाल देते हैं। किंतु ऐसे ही कृष्ण महाभारत में और महाभारत के पहले कंस जरासंध इत्यादि अगासुर बकासुर इनका भी तो मान मर्दन किया ना, इनको क्षण मात्र में ही कैसे कंस यहाँ पर बैठा था, जहाँ हम लोग बैठे हैं ये कंस टीला के अंतर्गत लाखों लोग जमा थे, शंकर जी का धनुष था, कृष्ण धनुष को तोड़ा, चारण मूर्ति को वध किया और उसके बाद में कंस ने कहा वसुदेव को कैद कर लो फिर से, नंद बाबा को भी कैद कर लो, ब्रज में भागने न पाए, और इन दोनों को भी कैद कर लो, बस ये कृष्ण और बलदेव। कृष्ण जैसे ही सुने बस अखाड़े से उसको चारों मुच्छों को मार करके वहीं से एकदम कूद पड़े और कूद करके मंच पर चले गए और मंच से जा करके बोले, अरे कम तू मेरा मामा बनता है, तू मेरी मैया का जिस प्रकार से केस पकड़ा था और दूसरे हाथ से तलवार लेकर के चला था मारने के लिए, मैं भी तुम्हें तुम्हारा ही केस पकड़ करके तुम्हें गिराता हूँ, अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, बस वहीं से केस पकड़ करके ऐसे जोर से खांस खींचा, वो नीचे गिरा, कृष्ण उसके ऊपर में छाती के ऊपर में टूट गया, बस कूदने से ही वो मर गया। मरा कि नहीं मरा इसको लक्षण देखने के लिए उसको पैर को पकड़ करके जब खेचा, मुर्दा जब हो जाता है आदमी तो एक जगह खेचने से ही सारा ही शरीर हिल जाता है, उन्होंने इसको पैर पकड़ा और खेचने लगे तो ये कंस खा रहा है ना अभी हमारे पीछे, खेच करके जब ले गए तो ये कंस खार हो गया। इसके बाद में ले जाकर के वहां पर उसका अंतिम संस्कार इत्यादि करवाया गया। ऐसे ही कंस को नहीं, जितने असुरों को असुर थे सबको क्षण मात्र नहीं, बिना किसी चीज के अस्त्र शस्त्र के सहारे पुतना को दूध पीते पीते ही मार डाला, और सब असुरों को भी ऐसे सप्तासु अभासु बकासु जितने हैं सबको मार करके खत्म कर दिया। और इसी तरह से उन्होंने देखो सुनते हैं कि कृष्ण ने तीर हरण किया, ठीक है तीर हरण तो किया किंतु किसी को तीर दिया भी तो धारण करके दिया, किसका तीर दिया, द्रौपदी का तीर दिया। जगत के लोग ये सब चीजें नहीं समझते हैं, जो इतिहासकार हैं जो साधारण नास्तिक व्यक्ति हैं वो इन चीजों को नहीं समझते, कृष्ण पर लांछन लगाते हैं, उनका भजन करने की तो बात क्या, उनके विरुद्ध में भी लिखते हैं, कुलवंत ना सुखवंत सिंह और कौन कौन ऐसे ही नास्तिक है, ऐसे ही लीलाओं का जिक्र करते हैं, समझते तो है नहीं। कृष्ण इधर में गोपियों का तीर माने क्या, कृष्ण और उनके बीच में कोई अंतर न हो, सर्वस्व कृष्ण के चरणों में समर्पण करना ही भक्ति है। यदि कृष्ण से हम लज्जा क्या रख सकते हैं, एक छोटा सा छोटी सी बालिका है, यदि उसका पिता बच्ची ने प्रति कर दिया, छोटी सी बच्ची, और पिता उसको धो देता है उसके सब अंगों को, तो इसमें बुरा क्या है। यदि दुष्ट लोग होंगे कामुक होंगे वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, कृष्ण तो सब जीवों के अंतर और बाहर सर्वत्र हैं, उनसे लज्जा क्या। और ये तो हार चामा ये तो मिट्टी है, इसलिए कृष्ण से कोई लज्जा की बात नहीं, कृष्ण अंदर भी है बाहर भी है, वो कहां नहीं है। इस चीज को दिखलाने के लिए उन्होंने क्या किया, द्रौपदी की बीच भरी सभा में लाज जा रही, दो सातन 10,000 हाथियों का बल लेकर साड़ी खेच रहा, वो भीष्म पितामह की तरफ में देखेंगे ये हमारी रक्षा कर देंगे, इनको कह देंगे ये मत छूटो, किंतु वो सिर झुकाए रहे। द्रोणाचार्य की तरफ में देखा, पांचों पांडवों की तरफ में भी देखा उन्होंने, एक एक से बलवान, किंतु पांचों पांडव में भीम जबकि गदा लेकर के उठे वहां पर चित्र है, एकदम सम समा करके मारने के लिए उस समय युधिष्ठिर महाराज ने उनको पकड़ लिया और पकड़ करके उनको बैठा दिया, अरे देखो कृष्ण नहीं है, हमारा विश्वास है कृष्ण इसकी रक्षा करेंगे, आज जगत देखे जो द्रौपदी की रक्षा कौन करता है, ये कहकर उनको चुप कर दिया। द्रौपदी जी देखा जो अब कोई सहारा नहीं रह गया, मुख में अंचल लगा दिया और अंचल लगा करके और कृष्ण को पुकार रहे हैं, किंतु कृष्ण छटपट करते हैं हाँ नहीं रहे, क्यों, अभी अपना भरोसा है कि मैं दांत के तले जो अंचल पकड़ रही हूँ इसी से मेरी रक्षा हो जाए। जब और भी जोर से खींचने लगा, अब एकदम कपड़ा खुलने ही वाला था, इतने में उन्होंने दोनों हाथों से उठा दिया और जोर से बोली, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन, जब ही ऐसे मुख खोला और कपड़ा भी गिर गया, आंख उनकी बंद हो गई, तन्मय हो गई, एकदम कृष्ण की पुकार पहुंची द्वारका में। और उस समय में रुक्मिणी के घर में थी, वो कृष्ण थे। गरुड़ की जरूरत नहीं, मन से भी तेजी से वहां पर पहुंच गए हस्तिनापुर में। और वहां पर जाकर के वस्त्र बन गए, लिपट गए। उनका अपना जो पहले वाला वस्त्र था वो तो वो शासन ने खेची लिया था। अब जो कपड़ा आने लगा, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, बैंगनी, कपड़ों से एकदम अंबार हो गया और सारा घर भर गया। ये कपड़ा क्या था? स्वयं कृष्ण बने हुए हैं। उस समय द्रौपदी के चारों अंगों पर, सब अंगों पर जो लिपट रहा है, ये कौन लिपट रहा है कपड़े के रूप में? ये तो कृष्ण है। तो समय जब कपड़े होकर के चारों अंगों, सब अंगों पर लिपट रहे हैं, तो जो उनकी ये लाज गई नहीं? वो तो लाज गई कतन नहीं। इस तरह से उन्होंने उनकी रक्षा की, इस तरह से कृष्ण ने ब्रज में लीला की। ये उनकी सर्वोत्तम लीला है। इसके बाद में मथुरा की लीला हुई और मथुरा के बाद में द्वारका की लीला हुई। और समय हो गया है 12:15 बज रहा है। आप लोग अभी दर्शन करेंगे, ये अभी अभिषेक हो रहा है। और एक कीर्तन कीजिए महामंत्र, सब लोग कीर्तन करके, सब आरती दर्शन करके, आप लोग थोड़ा सा चरणामृत और ये ग्रहण करके इधर से लोग आएंगे और इधर से आप लोग बोलो गौ प्रणाम।
इसलिए भाव ही प्रधान है भगवान जी के समय। भगवान कभी नहीं किसी के पुत्र, यह बात ठीक है, किंतु जिसके हृदय में वात्सल्य भाव अधिक होगा और वात्सल्य भाव से उनकी भगवान को सेवा करने की क्रिया अत्यंत अधिक जिसकी होगी, उसके पुत्र रूप में वो प्रकट होगा। यशोदा जी और नंद बाबा देवकी और वसुदेव जी का वर्णन लिखा है गोपाल चंपू मेजी गोस्वामी ने, पर श्रीमद् भागवत के द्वितीय अध्याय में भी कुछ कुछ भगवान के गर्भ में आने का ये दिखाया गया है वसुदेव देवकी के। पहले भगवान वसुदेव जी के चित्त में आविर्भूत हुए। कैसे वो आविर्भूत हुए? पुत्र की भावना में, पूर्व जन्म का संस्कार था, पुत्र के रूप में मांगा था और वही संस्कार अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। और बढ़ते 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 हमारे पुत्र हैं होंगे, ये हमारे अष्टम गर्भ वाला हमारा पुत्र, इसलिए ये पुत्र का अभाव उनके हृदय में धीरे 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 खूब दृढ़ होने लगा। और धीरे 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 जब वो पैदा हुए तो उनमें पुत्र की भावना रही। संत चक्र गदा पद्मा लेकर के आए, जब तक संत चक्र गदा पद्मा था अंगों में तब तक तो पुत्र की भावना को निश्चित करो। और जब वो प्राकृत शिशु जैसे प्राकृतिक जैसे जैसे हो गए, क्यों ही उनका पुत्र भाव जो था पहले थोड़ा सा कम, अब वो फिर तो इसलिए पुत्र की भावना पूर्व जन्म के संस्कार से उनके अंदर में थी, वही दृढ़ होने पर वही श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव में, वही भाव जब दृढ़ हो गया तो भगवान भाव के अनुसार में उनके पुत्र के रूप में। इसलिए देवी और वसुदेव के हृदय में हुआ, उनके संबंध में ऐसा वर्णन नहीं किया गया नंद और यशोदा के लिए श्रीमद् भागवत, किंतु गोपाल चंपू में ये वर्णन किया और वर्णन किया गया बृहद वैष्णव तोषिणी में, जिसका वर्णन किया गया। और वही बात सनातन गोस्वामी ने कि यही कृष्ण चतुर्भुज हुए और इनके हृदय में हुआ जो मैं अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकूंगी या कर सकूंगा दोनों भगवान से प्रार्थना होने की कि आप शिशु बन जाए उसी समय में वहाँ जो वो आविर्भूत हुए समकाल में कृष्ण गृह के रूप में वो यहाँ उपस्थित होकर के अपने अंदर में मिला और कैसे मिला दिया इसका वर्णन कृष्ण जामल में ये दिया गया है नीने सौदामिनी जथा आकाश में बादलों में खने खने सौदी सौदामिनी जथा जैसे घन में मेघ में विद्युत चमक करके अब फिर उसमें लीन हो जाती है ऐसे ही एक चतुर्भुज कृष्ण अपने मूल अंशी जो कृष्ण है उनमें लीन फिर उनको देखा नहीं गया इसलिए आत्मज का तात्पर्य यही लगाएंगे भाव के द्वारा जिनके अंदर में आत्मज कृष्ण मेरे पुत्र हैं ये वास्तव भाव आता है भगवान उनके पुत्र हो जाते हैं।